الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بزرگان قوم و ملت، طالبان علوم دین، آپ اور ہم دونوں اس وقت یہاں پر جمع ہیں اور ہمارا اور آپ کا جمع ہونا علم کے لیے ہے، دین کے لیے. نہ آپ کا ہم سے کچھ لینا دینا، نہ ہمارا آپ سے کچھ لینا دینا، لیکن دونوں کا ہی لینا دینا ہے. جب دین اور علم ہو لینا بھی ہے دینا بھی ہے، ویسے ہی آپ بھی کہہ سکتے ہیں لینا بھی ہے دینا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صفات رکھی ہے کہ وہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، اور یہ صفت ہر انسان کے اندر خدا رکھی ہے، چاہے وہ چاہے چاہے نہ چاہے، خواہی نہ خواہی، یہ عمل چلتا رہتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ بنایا ہے، اتنے بہت سے بیٹھے ہیں سب الگ اور ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں، یہ شان مصور ہے. اللہ تعالیٰ مصور ہے، سب انسان ایک ہیں لیکن سب الگ الگ ہیں. اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اسی میں ہیں، اس کے دوسرے بنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں صفات اتنی زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ والا ایسا ممکن ہے، تو ان صفات میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہے. اسی وجہ سے اب تو یہ تحقیق تقریباً ہو چکی ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن مٹ نہیں جاتا، اس کے جسم میں گھٹی ہوتی ہے، ذرہ کہہ دیجیے، ایٹم کہہ دیجیے، ایسا ہوتا ہے کہ ہزار ملائے جانے کے باوجود اور مٹی میں دل مل جانے کے باوجود وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہاں تک کہ اب یہ شیاطین الانس جو ہیں یورپ کے، وہ اس سے انسان بنانے کے چکر میں نہیں، لیکن ابھی تک وہ مکھی نہیں بنا سکے تو انسان کیا بنائے. اور قرآن مجید نے اسی لیے مکھی کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ ہمارے اچھی طرح انسان کو سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ بات تو تقریباً پائے تو پہنچ چکی ہے کہ ہر انسان آتا تو نکلتا تو انسان سے ہے، جب آ جاتا ہے تو اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کے ساتھ آتا ہے. और उसके अंदर गैर मामूली सिफात होती है। तो जिस तरह उसका जिस्म भी बाकी रहता है, सिकुड़ कर वो एक आइटम बन जाता है, इसी तरह हर इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी सिफतें बाल दी हैं जो दूसरों में नहीं। कुल लयोमिन हुआ की शान, तो कुल लयोमिन हुआ की शान, उसकी तजल्ली हर आन है, हर लहजा है, हर जगह है। और उसी का मुशाहदा करने वाले करते रहते हैं, देखने वाले देते रहते हैं, और उसी से मारफत इलाही उनको हासिल होती है। और उसी के बारे में कहा गया है कुल आयतिन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, जितनी निशानियां बिखरी भी नजर आ रही हैं, चाहे वो देखी जाने वाली हो या सुनी जाने वाली हो, पढ़ी जाने वाली हो या मुशाहदा की जाने वाली हो, उन सब से उसकी पहचान होती है, क्योंकि वो खालिक भी है, बारी भी है, मुसव्विर भी है, बदीअ भी है। बदीअ उसको कहते हैं जिसके सामने कोई मिसाल ना हो, उठाकर खड़ा कर दे। खालिक उसको कहते हैं खड़ा करने के बाद उठा दे, और बारी उसको कहते हैं कि उठाने के बाद बना दे, और मुसव्विर उसको कहते हैं बनाने के बाद संवार दे। तो ये सारी सिफतें खुदा की हैं, जिसकी निरंगियाँ सारी तालियाँ सारी दुनिया में फैली हुई नजर आ रही हैं। तो हम और आप जो यहाँ जमा हुए हैं, ये इल्म की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, हम सब अलग अलग हैं लेकिन इकट्ठा हो गए। किस नाम पर इकट्ठा हो गए? दीन के नाम पर इकट्ठा हो गए, इल्म के नाम पर इकट्ठा हो गए। और यही एक बहुत बड़ी अलामत है कि बता दिया गया कि अगर तुम दीन की बुनियाद पर इकट्ठा होना चाहोगे तो हो सकते हो, और इल्म की बुनियाद पर इकट्ठा होना चाहो तो हो सकते हो। इन बुनियादों को छोड़कर अगर किसी और बुनियाद को तुमने पकड़ा और उस पर इकट्ठा होना चाहा तो हम बिखेर देंगे। तो हमारी वहदत अगर कायम रहेगी तो दीन की बुनियाद पर कायम रहेगी, इल्म की बुनियाद पर कायम रहेगी। इसी वजह से इल्म भी एक इकाई है और दीन भी एक है। इल्म इकाई है तो उसके अंदर सनवियत नहीं, एक यूनिट है, एक वहदत है, उसमें दो ही नहीं। और इसी तरह दीन भी एक है, दो नहीं। कुरान मजीद में इसीलिए दीन का लफ्ज़ कहीं भी जमा नहीं आया है। अध्ययन पूरे कुरान मजीद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं यब तगी गैर अल-इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और मैं यब तगी गैर अल-इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, के दीन इस्लाम के अलावा कुछ और चाहोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और कबूल न करने का मतलब क्या है? काम यानी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अगर तनहा और जितनी चीज़ें हैं यानी इम्तियाजात हैं या खसूसियात हैं, उनको अपनी जगह पर रखकर इल्म को आपने वहदत का जरिया बनाया और इल्म को वहदत का जरिया बनाया तो हमारी यूनिट कायम रहेगी, वरना ये यूनिट बट जाएगी। कोई और बुनियाद नहीं, नस्ल बुनियाद नहीं, जबान बुनियाद नहीं, वतन बुनियाद नहीं, बिरादरी बुनियाद नहीं, इलाका बुनियाद नहीं, मुल्क बुनियाद नहीं, कोई चीज़ बुनियाद नहीं है, सानवी हैसियत है। इसीलिए कुरान मजीद में इसको कहा गया तआरुफ का जरिया है, ये तआरुफ का जरिया है। ये तआरफु इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तो जो दीनदार होगा वो अल्लाह के मुअज्जज है, मुकर्रम है, और जो मुअज्जज है, मुकर्रम है, वो जिसको अपने जिलों में ले ले वो मुअज्जज मुकर्रम हो जाएगा, या उससे जो जुड़ जाएगा वो फिर इज्जत वाला हो जाएगा। तो मालूम है जो दीनदार होगा मुअज्जज होगा, जो मुअज्जज होगा वो वहदत के और यूनिट में कायम रहेगा और बाकी रहेगा, और जो इधर उधर मुबतला हो जाएगा यानी तआरुफ को तकासुल बना देगा तो जाहिर है वो आपसी इंतशार का और इंतशार का शिकार। यानी तो कबाइल और नस्लों को क्या कहा गया? तआरुफ़, तआरुफ़ के लिए है, तआरुफ़ पहचान के लिए है। यानी अगर आप सबका नाम एक रख दें, जैसे बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब हैं अल्लाह के बंदे, तो आप सबका नाम रख दें इबादुल्लाह, और या सबका अब्दुल्ला रख दें, चलिए सबका नाम अब्दुल्ला है, तो आप कहें अब्दुल्ला, अब कौन समझे तो अब्दुल्ला ही अब्दुल्ला, पहचान तो कुछ बनानी पड़ेगी। आपका नाम है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, आपका नाम है फला, आपका नाम है फला, ये सब पहचान के लिए है, ऐसा भी बात नहीं अलहमदुल्ला। लेकिन अब अगर कोई कहे आप हैं ए अब्दुल करीम, तो आप कहें नहीं मैं अब्दुल्ला हूँ, अब्दुल करीम क्यों कह रहे हैं आप, तो गलत हो जाएगा। पहचान तो कुछ होनी चाहिए बुलाने के लिए, आसानी के लिए पहचान होती है, आसानी के लिए पहचान होती है। तो ये बिरादरियाँ, ये कबायल, ये वतनियतें, ये कौमियतें, ये दुनिया की जो चीज़ें चल रही हैं सब पहचान के लिए हैं। जब हम पहचान से उसको निकाल देंगे तो हम इंतिशार और अल्तिशार का निकाल देंगे। और सहूलतों के लिए हैं, उन सहूलतों को समझ कर अपनाएंगे तो हम कामयाब रहेंगे, लेकिन उसको जब असल करार दे देंगे तो हम वहाँ नाकाम हो जाएंगे, ना मुराद हो जाएंगे, अल्तिशार पैदा हो जाएगा कि यहाँ हम इसलिए जमा हुए, जब दीन के नाम पर जमा हुए, इल्म के नाम पर जमा हुए, आज जमा हो गए बैठ गया सर। और अगर यही इल्म और दीन हम वक्त हमारे सामने रहे और हम उसको हमेशा पेश नज़र रखें तो कभी हमें यूनिट बढ़ नहीं सकती, हमारी वहदत तकसीम नहीं हो सकती, हमारा इत्तेहाद पारा पारा नहीं हो सकता, हम खानों में तकसीम नहीं हो सकते, हम इकाई के साथ पूरी ताकत के साथ पूरी जवानाई के साथ वो काम कर सकते हैं जो वहदतें किया करती हैं, जो यूनिटें किया करती हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इसीलिए उस शख्स को गाली दी है जो यूनिटों में बैठे, जो खानों में तकसीम करे और इधर उधर के नारे लगाए और इधर उधर की ज़हनियतें पैदा हों उसके अंदर, तो उसको आपने सख्त तरीन बात कही है जो हदीस में आती है कि आप हमारे हजरत मौलाना के मौके से फरमाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनसे ज़्यादा पाक मुकद्दस कोई पैदा नहीं हुआ, और आपकी ज़बान जिस पर कभी हक के सिवा कोई चीज़ आई नहीं और अच्छाई के सिवा कभी बुराई उस पर गुजरी नहीं, और अच्छे अल्फाज के अलावा बुरे अल्फाज से भी आप नमाज में आए नहीं, और आपने नमाज को रोजा छोड़ने पर भी इतनी सख्त बात नहीं फरमाई जितनी आपने इस तरह के नारे लगाने वाले को और ऐसी बात कहने वाले को फरमाया, यानी उसको उसके बाप के शर्मसार की गाली दे दो और इशारे से नाय से काम कर लो, ये आखिरी बात है। हमारे हजरत मौलाना ने फरमाया कि नमाज रोजा छोड़ने पर भी सब कुछ आपने नहीं फरमाया कि जो इस तरह खानों में तकसीम किया जाए, बांटा जाए, जाहिलियत का नारा लगाया जाए, बिरादरीवाद का नारा लगाया जाए, कौमियत का नारा लगाया जाए, बेजा वतनियत का नारा लगाया जाए। देखिए वतनियत की अपनी जगह पर, बिरादरी की अपनी जगह पर, उसको कबूल किया है इस्लाम, लेकिन सबको इस अंदाज से एक लड़ी में प्रो दिया है कि अगर आप उसको लेकर आगे बढ़ें तो न बिरादरी का शीरा मुंतशिर हो और न वतनियत पामाल हो और न हमारी कौमियत हमारे पैरों के नीचे रोंदी जाए, न हमारी और जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो और पामाल हो। लेकिन इस तरह इस्लाम ने उसको उससे निकाला है कि दीन के एक लड़ी में हम सब पिरोते चले घूमते चले जाएं और उसके अंदर गुन कर एक हार की तरह हम शक्ल अख्तियार कर लें कि जिसके गले में डाल दिया जाए वो चमक जाए। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये इतनी अहम बात है, अक्सर बेशतर हम इसको नज़रअंदाज कर लेते हैं, और नज़रअंदाज इसीलिए करते हैं कि हमारे पास सही दीन नहीं, सही इल्म, इल्म है लेकिन नाक़िस, और दीन है लेकिन नामुकम्मल। दीन सिर्फ नाम ना अकीदे का है, ना इबादात का है, ना मामलात का है, ना ताल्लुकात का है, ना सियासत का है, ना मुआशरात का माशरत का है, दीन इन तमाम चीज़ों पर हावी है। इसी तरह इल्म ये किसी खास फर्द से मुताल्लिक नहीं, ना औरतों के साथ, ना मर्दों के साथ, ना बड़े के साथ, ना छोटे के साथ, ना करीब के साथ, ना बड़ी के साथ, इल्म हर एक के साथ। كل من دعا انه مسلم فعليه ان يطلب العلم طلب العلم فريضه على كل مسلم یعنی کہا گیا کہ طالب علم علم حاصل کرے فلا مدرسے کا شاگرد پڑھتا ہے وہ علم حاصل کرے فلا علاقے کے لوگ علم حاصل کریں فلا برادری کے لوگ علم حاصل کریں فلا خاندان کے لوگ علم حاصل کرے بس اتنا کہا گیا ہے العلم حاصل کرو یعنی اگر علم آ جائے تو علم کے آتے ہی چمک پیدا ہو جاتی ہے نور پیدا ہو جاتا ہے روشنی پیدا ہو جاتی ہے جیسے بجلی نہ ہو اور اندھیرا ہٹا ٹوک ہو تو آپ کیا کرتے ہیں ماچس ہے تو ماچس جلا لیتے ہیں कोई चीज ढूंढना है अपन अंदर रास्ता तय करना है और कुछ नहीं उसको फौरन माचिस जला लेके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। और फिर आजकल तो मोबाइल है उसको इनोवेशन कर दिया, थोड़ी देर के लिए जले जा उसको अंदर जला लिया आगे बढ़ते चले गए और फिर आगे बढ़े तो अंदर वो था पुराना तेल से पलीता और उसने आपको जला दिया और रोशनी थोड़ी हो गई। फिर मालूम हुआ कि नहीं अब जो है बल्ब जला सकते हैं तो आपने बल्ब जलाया या जनरेटर जला दिया, जनरेटर से एक इलाके में रोशनी हो गई और उसके बाद थोड़ी देर मालूम नहीं बिजली आ गई तो बढ़ता चला जा रहा है कि बढ़ता चला जा रहा। छोटी सी लाइट से आप ऑफिस तक पहुंच गए, किसी का नाम इल्म। इल्म इसको कहते हैं, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म मालूम के जमा हो जाने का नाम नहीं है। इल्म के अस में दो खानों में लोगों ने मिलावट बांट दिया। एक तो इल्म वो है कि आप यहाँ खड़े हो कहें कि अगर किसी के पास वो क्या कहते हैं दिया सलाई होती तो उसको जला लेते, मोमबत्ती होती तो रोशन कर लेते और बत्ती होती तो जला लेते और अगर जनरेटर होता तो चला लेते और बिजली होती तो लगा लेते, ये कह रहे हैं, ये मालूमात हैं। और एक वो है कि उसने माजे जब से निकाल दी जलाया और रोशनी हो गई उसने जा गया। हम लोगों ने इल्म को दो खानों में बांट दिया इसलिए इल्म की बरकतों से महरूम हो गए। इसकी वजह से आप देखिए परामीर में इल्म का जहाँ भी लफ्ज आया है वो इसी माने में आया है, इसीलिए इल्म को वहाँ दो खानों में बांटा गया है। बस अगर परामीर उठा देखें और हदीस देखें, एक इल्म नापे और एक इल्म गैर नापे। जो नफा पहुँचाने वाला इल्म है वो तो गया कि इल्म है और जो नफा पहुंचाने वाला इल्म नहीं है लेकिन देखने में इल्म है वो मालूमात है। मालूमात आजकल बढ़ती जा रही है, इल्म घटता जा रहा है, इसका इजाफा मालूमात का है और इल्म का इल्म कम होता जा रहा है। ये हदीस में आया है, एक हदीस में आता है कि आखिर में उलमा उठ जाएंगे, इल्म उठ जाएगा उलमा उठ जाने, इसलिए कि देखिए ये इल्म वो है जो उलमा के साथ चलता है। यानी एक तो है माचिस होती जो जलाते हैं ये मालूम है और एक चीज जेब से निकाली और जला दी, ये इल्म उलमा के साथ है। इसलिए कि बगैर उलमा के इल्म हो ही नहीं सकता, तो जब आलिम होगा तो इल्म होगा और अगर आलिम के पास इल्म नहीं है यानी बच्ची नहीं है उसके पास जलाने की सलाहियत नहीं तो आलिम कहलाने का मुस्तहक ही नहीं, वो तो कारून है अपने अपने खजाने से फायदा नहीं उठा पा रहा, वो शद्दाद है कि जन्नत में दाखिल नहीं हो पा रहा, वो गधा है जिसके कुछ पर कुछ तारे हैं लेकिन उससे फायदा नहीं उठा पा रहा। मसल लदीन हमिल तौरात तुम लम यहमिलूहा कमा सलिल हिमार यहमिलु असफार, यहूदी भी कहा गया मालूम का खजाना रखते हैं लेकिन इन से कौन से दूर। आज सबसे ज्यादा उलमा यहूद में है लेकिन सबसे ज्यादा इल्म से दूर, इल्म की रोशनी से महरूम और इल्म की बरकतों से बिल्कुल बेबहरा और दूर। तो मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है इल्म आए तो सब, और ये इसीलिए कहा गया तलब العلم فريضة على كل مسلم, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तो क्या फर्ज है, जैसे ही आप आए आप पर इल्म का हासिल करना फर्ज हो गया। पहले तो इस तरह हुआ कि आपके माँ बाप से कहा गया के बच्चा जल्दी आ जाए उसके कान में इल्म का सूर फूंक दो, तो आपने क्या किया, एक कान में अजान दूसरे कान में इकामत, यह इल्म का सूर फूंक दिया। वो सारे कलमे कह दीजिए जो अद्दावत तामा से ताल्लुक रखते हैं और जो आप नहायत तक बता देते हैं कि बच्चा जो है अब आगे जाने वाला है आगे बढ़ने वाला है, तो आपने सूर फूंक दिया और उसके बाद जब बाले हो गए तो अब आप पर अकीदा समझ लेना ये लाजमी हो गया और नमाज पढ़ लेने का तरीका सीखना वाजिब हो गया, ये है अल-इल्म। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप जैसे ज़कात आप पर फर्ज हो गई तो ज़कात का इल्म हासिल करना फर्ज हो जाएगा, आप त्याजे हो गए तो तिजारत का इल्म हासिल करना फर्ज हो जाएगा, आप सियासत में आ गए तो सियासत का इल्म हासिल करना फर्ज हो जाएगा, इसी तरह देखते चले जाइए। बीवी आ गई तो बीवी को का जानना है, सुनने में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है जानना जरूरी हो जाएगा। ये इन फर्क होता चला जा रहा है दर्जा बदल जा। इसीलिए हमारे यहाँ गोली सुनते हजरत शाह मीना साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्गों में है, वो पढ़ते थे, एक बड़े उस्ताद थे। किताब सलाल जब खत्म हो गई तो उस्ताद ने कहा किताब जका शुरू करना है। कहने हजरत नमाज पढ़ उसकी मसाए चालू हो गए, जब पैसा आएगा तो किताब जका पढ़ने लगे। ये उनकी जहनीत थी। तो अल्लाह ने कैसा ऊंचा मकाम अता फरमाया शाह मीना साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि वो खालिस इल्म चाहते थे, मालूम नहीं चाहते। हम लोगों ने मालूम को हासिल करा लिया, इल्म को के दर्जे को घटा दिया, तो इल्म से कोरे हैं, मालूम बढ़ती चली जा रही है। जैसे किसी का सर इतना बड़ा हो जाए और बदन सिकुड़ जाए तो क्या होगा बेचारे का, देखने में भी बुरा है और जाहिर है कि सर का उठाना मुश्किल हो जाए, फिर बदलना बदल बिल्कुल लाभार और सर इतना बड़ा तो क्या होगा, बाबा सर गिर गिर पड़ेगा और वो चल नहीं सकता। आजकल अहमी हो गया, इल्म का सर इतना बड़ा हो गया, यानी मालूम ढेर सी है लेकिन अमल कुछ है, उसकी रोशनी है ही नहीं, उसका फल है ही नहीं, उसकी ताकीद है ही नहीं। तो मालूम हुआ कि इल्म तो घटता जा रहा, मालूम बढ़ के चली जा रही। हालांकि यहाँ का मामला यह है कि सर जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलाम क्या आता है, आपकी हकीम मुतवाजी सर से लेकर पैर तक आप बिल्कुल कामिल मुकम्मल इंसान है। लेकिन ये कि जैसे हाथ हो वैसे सर, सर जिसम से बड़ा ना हो, सर मौसली हो और हाथ पैर भी मौसली हो, पूरा जिसम इतदार की शान योग में हो, और जब इतदार होगा तो कमाल होगा। इसी तरह फल और खुल को दोनों एतबार से कामिल मुकम्मल हो, अखलाक के एतबार से कामिल मुकम्मल हो और जिसमानी साख के एतबार से भी कामिल मुकम्मल हो, और अंबिया दोनों भी कामिल मुकम्मल होते हैं। जिसम भी आला होता है कामिल और उनके अखलाक भी आला और कामिल होते हैं, यानी उनके अंदर इस बात की तकलीफ नहीं होती। इसीलिए हजरत साहब सामने एक बात दिखती है उसमें लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसा लिखा अंबिया है कराम वो अकल में इकरार नहीं रखते, वो फितन फिर अकल नहीं होते। अच्छा साहब ने किया है तो बहुत सारे परेशान होते हैं कि अकल तो जितनी बढ़ती चाहे उतनी अच्छी है, ऐसा नहीं है। अकल की भी तीन तीन इसमें हैं, एक तो ये है अकल कम हो जाए तो उसको तो कहते हैं हमाकत बलागत सफाहत, और अगर अकल आगे बढ़ जाए और धोखा दी ये सब सिखाती है, और जब मौसरिल होती है तो वो समझ वाली दानिश वाली और अकलमंद अकल जिसको कहते हैं अकलमंद इंसान उससे कहते हैं, यानी जिसके इफरात और तफरीत से वो पाक हो। इसलिए अंबिया कराम इफरात और तफरीत से हर लिहाज से पाक होते हैं, उससे बदल दीजिए आप उसका समझना और आसान हो गया कि उससे जो भी तीन दर्जे हैं अगर उसका सिकुड़ जाए उसका ही ना हो तो वो जो है जो बुजुर्ग आदमी किसी के सामने खड़े होने के लायक नहीं, इतना डरपोक है ये पसंदीदा नहीं है। और दूसरे है तहव्वुर, ये इफ़राद है, ये हर वक्त वैस रहता है। जैसे आजकल बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरा गुस्सा जो है मेरा काबू नहीं है, तो यानी मैं बेवकूफ़ हूँ। तो मतलब दूसरा अगर तर्जुमा किया जाए इसका मतलब चुपके से उनसे कहा जाए जनाब बेवकूफ़ है, इसलिए गुस्से को काबू भी नहीं कर पाते, ये तर्जुमा थोड़ी है। तो उसको कहते हैं तहव्वुर में वैस रहता है, जरा समझ लगवाए बिल्कुल और फोन बकने लगा कि और काबू में नहीं है अपने। और दूसरी चीज़ है तीसरी जो है इस्तेदार वाली शक्ल उसने की है वो बहादुरी और शिजात, जो शिजा होता है बहादुर होता है वो ना मुबदिल होता है ना रैश होता है, इतना उससे चलता चला जाता है, ये है इस्तेदार। तो इस्तेदार असल में होना चाहिए कि यहाँ पर जो कहा गया है इल्म का हासिल करना फर्ज है वो इसी एतवार से है कि जो चीज़ जिस चीज़ की आपको जरूरत है मालूम करना चाहिए कि आपको कुदरत में क्या रहनुमाई उसके दी गई। जब उस रहनुमाई के तहत आप आगे बढ़ेंगे और दीन के सिलसिले में क्या रोशनी दिखा रहा है ये दो चीज़ें लेकर चलेंगे तो फिर कभी आप गुमराह और हम लोग गलत रास्ते में नहीं पड़ सकते, न इफराद का शिकार होंगे न तफरीक का शिकार होंगे। और आजकल ये दोनों चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं और उससे हम दो दूर होते चले जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आज जो काम हम कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे, इसलिए कि जब हम बेअतदाली का शिकार हो गए, हमारी ये वहदत पारा पारा हो गई, हमारा इरादा बिखर गया, हमारे दिल फट गए, हमारे दिमाग उड़ गए, तो इसका नतीजा ये होता है कि आदमी अपनी जगह पर है लेकिन काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा है। जब सब मिलकर करेंगे और सब एक दूसरे का साथ देंगे, जिस तरह हाथ पैर होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, ये जिस्म जो है इसमें देखिए आंखें अलग हैं, कान अलग हैं, नाक अलग है, जबान अलग है, पैर अलग हैं, और सबके अलग अलग काम हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं, तब जाके पूरा मुकम्मल काम होता है। हाथ से आप खाना खाते हैं, अगर प्लेट के सामने खाना रखा है आप मुँह से खा लीजिए, नहीं खा पाएंगे, और अगर खाने की आपने कोशिश की पूरी दुश्वारी का शिकार हो जाएंगे। एक तो जिस्मानी एतबार से देखिए अजीब गरीब, आप ये गौर करें तो लग रहे हैं, तो एक तो जिस्म है इंसान को अल्लाह ने इज्तिमाइयत के साथ रखा ही है, तब देखिए हाथ पैर अल मुस्लिम कल मुस्लिम कल जसद वाहिद शका महुदुन तदा लहू सायर जसद के सहरी वल हुम्मा और फिर तावादिहिम मतआतुफिहिम मतराहमिहिम, तीन लफ्ज इस्तेमाल किए हदीस में, तातुफ तराहम तवादुद मोहब्बत में, एक दूसरे का मेहरबानी करने में, हाथ बटाने में, एक जिस्म वाहिद की तरह है सारे मुसलमान, इसमें किसी का मामला अलग नहीं है, और जो जरा अलग भी हैं उनको भी जोड़ दिया गया है। आपके अंदर अल्लाह ने इज्तिमाइयत रखी ही है, सर आप रोटी खा लीजिए, नहीं खा सकते एक रोटी, अगर आप खाना चाहें एक लुकमा आप खाना चाहें, जब तक 15 आदमी उसमें शरीक नहीं होंगे आप खा ही नहीं सकते। बोता कोई है, काटता कोई है, पीसता कोई है, पकाता कोई है, कितने मरहलों से गुजरता है, फिर आपकी पैर में लगाता कोई है और आपका हाथ आपको खिलाता है और पेट में फिर हो जाता है, कितने मरहलों से आप गुजर के एक लुकमा खा पाते हैं। तो मालूम हुआ इज्तिमाई शक्ल तो अल्लाह ने रखी रखी, इससे आप अपने आप को जुदा नहीं कर सकते, पर जिसको हम जुदा नहीं कर सकते उससे रोकते क्यों है, यानी जो रोटी हमको खिला रहा है उससे नाराज क्यों है, जो हमारे लिए पीस कर ला रहा है उससे नाराज क्यों है, जो हमारे लिए खेत काट रहा है उससे नाराज क्यों है। अगर इस नजर से हम देखें तो सारी के सारी दुनिया हमारा मुआविन, हमारे मुआविन है, हमारा हाथ बटाने वाली है। इस अल्लाह के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे दिल पाक साफ रहे, जो हमारे बुजुर्गान दीन थे उनके हालात उठाकर देखें, उनके मामला भी कुछ इसी अंदाज के थे। एक वाक्य मैंने पढ़ा, बड़ा लुत्फ आया उसमें, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तुम जो थे, हजरत अली रजी अल्लाह इन अपने दो बच्चों का एहतराम भी करते थे। अजीब बात है, तारीख में मिलता है कि हजरत फातिमा की वजह से हजरत अली, हजरत हसन और हजरत हुसैन का भी एहतराम करते थे, मोहब्बत भी फरमाते थे, एहतराम भी करते थे। तो उनकी जो दूसरी बीवी बाद में हुई, उनसे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया हुए, वो बड़े मजबूत और जफा का शादी थे। तो हजरत अली जिन जंगों में जाते थे और जो महा बर्पा हो रहे थे, तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को उसमें शरीक करते थे अक्सर, और हसन हुसैन को रोक देते थे उनको बाकी ने, ताकि ये कई ऐसे मसले में उलझने ना पाए उनको। तो किसी ने आकर मोहम्मद बिन हनफिया से कहा कि तुम्हारे अब्बा भी अजीब हैं, कि जहाँ मामला आता है इनायत का और ज़्यादा मामला अच्छा करने का तो हसन हुसैन को आगे रखते हैं, और जब जंग और जिदाल का मसला आता है तुमको आगे रखते हैं। तो उन्होंने देखिए कितना उमदा जवाब दिया, ये जिसका जहन सही हो जाता है तो जवाब भी सही दिया। उन्होंने जवाब ये दिया कि वो हमारे अब्बा की आँखें हैं और मैं अब्बा का हाथ हूँ, तो अपनी आँखों की हिफाजत अपने हाथों से करते हैं। जाहिर है कि उसको तो बिल्कुल लाजवाब कर दिया, खामोश कर दिया। जब हम लोग इस नज़र से अपने साथियों को देखेंगे, अपने दोस्तों को देखेंगे, तो खुद ब खुद हमारी बहुत सी चीज़ें खुद खत्म हो जाएंगी, और हम इतिहाद के साथ इतफाक के साथ काम करने वाले बन जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमारी इज्तिमाइयत बरकरार ही है, इल्म सही से या इल्म कामिल से और दीन कामिल से। जब दीन कामिल से हम जुड़ जाएंगे तो फिर हमारे अंदर खुद ब खुद तरक्की की तरक्की पर चलने का रास्ता आसान हो जाएगा और वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे अंदर ये बात पैदा हो जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि हमको जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेस बताया है, बुनियाद बताई है, उस बुनियाद से अपने आप को अलग ना करें, वरना उसका नतीजा भी वो होगा जो आजकल हमारे सामने आता चला जा रहा है कि हमारे दिल और दिमाग जो इल्म और दीन से मुंसलिक सही तौर पर होने चाहिए वो नहीं है। ना दिमाग हमारा इल्म से वैसा मुंसलिक है, न दिल दीन से वैसा मुंसलिक है। दिल और दिमाग दोनों सही तौर पर मुंसलिक होना चाहिए, तो फिर वो बात पैदा होगी जो अल्लाह ने अखबार के अशार में आपने सुनी है कि ये रंग और बू जो दुनिया आपको नजर आ रही है इसमें उलझ कर न रह जा। आपको मकान तेरे बहुत से मरतबे मकामात बहुत आले सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, और तेरे मकाम और मकान और भी हैं तेरे तेरे मरतबे के लिए और तेरे मकामात बुलंद के लिए न जाने कितनी जगह मुंतजिर खड़ी हैं। आप वहाँ तो आए और अपने अपने को आप समझें कि अल्लाह ने आपके अंदर क्या सलाहियतें रखी हैं, क्या अल्लाह ताला ने कमालात से आपको नवाजा है और कैसा आपके अंदर किरण रखा है। लेकिन जाहिर है किरण जब तक खुलता नहीं उस वक्त तक आदमी दौड़ता नहीं। एक जो ये रूह है जो जिस्म को चलाती है, इसको हमारे शाह साहब ने ये कहा है, इसको नसमा कहा है हुज्जतुल्लाह में, कि ये रूह है हैवानी है जो खाना खिलाती है, दौड़ाती है, हाथ से पकड़ाती है, आँख से दिखाती है और दिल दिमाग को चलाती है, यानी दिमाग चल रहा है और यानी उस पर कोई हमला नहीं हुआ है और दिल हार्ट का हार्ट अटैक नहीं हुआ है, वो आगे वो चलाती रहती है, ये नसमा है। लेकिन एक रूह और है जिसको रूह रब्बानी कहते हैं, कहते हैं जब वो रूह आती है और उसका इंतकाल इस रूह से होता है तब इंसान इंसान बनता है और इंसान के अंदर वो सलाहियतें पैदा होती हैं कि जब जिसके अंदर पैदा हो जाए तो वो इंसान थोड़े इल्म से बहुत ज़्यादा फल लाता है। जैसे आजकल काश्त हो रही ना, पहले ये जो खेतियाँ होती थी तो एक मन डाला तो दो मन निकला, तीन मन निकला, लेकिन आजकल मामला ये है एक मन डालिए दस मन निकालिए। तो ऐसी ये भी रूह जब लग जाती है कि इंसान साथ जिसको दर्द कहते हैं, जब दर्द पैदा हो जाता है तो फिर वो इंसान इंसान बन जाता है और फिर ऐसा गैर मामूली वो काम करता है कि लोग दंग रह जाते हैं कि इसके अंदर ये कहाँ से आया। वो रूह रब्बानी का जब फैजान होता है उस पर और उसके अंदर सलाहियत होती है तो वो गैर मामूली काम करता है। इसीलिए बहुत से वो लोग जो मामूली करते थे लेकिन जब अल्लाह ने उसको नवाजा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और इसकी मिसालें तो बहुत ज़्यादा हैं, गैर मामूली मिसालें हैं। हमारे एक लतीफ़ा भी देखा हजरत यहाँ जोधपुर के अब्दुल गफूर साहब एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मामूली आदमी थे लेकिन दिल में दर्द बहुत था। हर तरफ हालात देखते थे, जाहिलियत देखते थे, बिलाद खुराफात देखते थे, परेशान रहते थे। तो उन्होंने हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ी, इतने बेचैन हुए कि वहाँ से लिखा हज हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह को कि हजरत आपके नाम से मुझे मोहब्बत मालूम होती है और आपकी खिदमत में आना चाहता हूँ, लेकिन एक पैसा मजदूरी रोज पाता हूँ, शाम को अपने वालदा के हाथ से जाकर रखाता हूँ और जात का खेली अगर इजाज़त हो तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। और खाली रमतुल्ला ने जवाब दिया कि बहुत से तेल भी से अच्छे होते हैं, आप फौरन से सीख रहे हैं। और हजरत खानी रमतुल्ला ने खिदमत रहे और वहाँ जाके हासिल किया, थोड़ा बहुत इल्म भी हासिल किया और हजरत खानी की सोबत में रहे। फिर अल्लाह ने ऐसा उनको नवाजा, उस वक्त अगर आप चले जाएँ तो राजस्थान में हर मदरसा उन्हीं का खुला हुआ है। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अल्लाह ने दीन और दुनिया की दोनों दौलतें अदा फरमाई, के सारे बेटे बड़े बड़ी मंजिल वाले हैं, सबके पास एक एक कोठी है, अशरफ मंजिल उन्हीं की कहलाती है और हर बेटे का एक नया कारखाना है। यानी सब उनके बेटे दुनियावी एतबार से भी आला दर्जे के हैं, अकीदे के एतबार से भी सही हैं और अल्लाह ने उनसे इतना बड़ा काम दिया कि पूरा इलाका उन्होंने हिला कर रख दिया। बात वही है, इतने बड़े बड़े लोग थे लेकिन वो रह गए, अल्लाह ने उनसे काम लिया। तो ये वो रूह रब्बानी का फैज होता है जो इल्म जब आता है तो थोड़े इल्म के अंदर बरकत अदा फरमा देता है, उसकी शब उसकी लौ को तेज करता चला जाता है तो दुनिया उससे जगमगा उठती है। तो सिर्फ मालूमात हासिल कर लेना और मालूमात का खजाना हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, जब तक के उसके लिए अपने आप को तैयार न करें और अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ बात पहले से करनी पड़ेगी, जिसमें दो बातें बहुत अहम हैं। एक बात ये है کے مالیات صحیح ہونی چاہیے, اس لیے کہ روح ربانی کا فیض ان لوگوں پر ہوتا ہی نہیں جو حرام غذا سے پلے پڑے ہیں, ہوتا ہی نہیں ان پر فیض, اس لیے کہ اگر حرام غذا آ جائے گی تو پھر اس کے دل و دماغ میں سیاہی چھا جائے گی, سوائے کہ اس کا کفارہ ادا کرے اور اس سے اپنے آپ کو جدا کرے. تو اگر آدمی مال حرام سے پلے بڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے اندر معلومات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہے تو یاد کر لے گا, محنتی ہے تو بہت سی کتابیں حل کر لے گا اور بہت کچھ اس کو حاصل بھی ہو جائے گا, ہو سکتا ہے تصنیفات بھی اس کے سامنے آ جائیں, لیکن بے فیض و بے فائدہ. الماری کی زینت تو بنے گی, قلب کی روشنی نہ بن سکیں گی. اور یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, اٹھا کے دیکھ لیجیے, فرمایا بہت سے لوگ کتابوں پر کتابیں لکھتے چلے جاتے ہیں لیکن سیاہی اور اولاد کے ریاض کے بعد کچھ نہیں ہے, اور بعض وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی زبان سے جملہ نکلتا ہے پورے پورے علاقوں میں ہدایت کا ذریعہ مل جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, اور پھر یہ لکھا ہے کہ اتنا زیادہ مطلب سنت ہوگا والا, جتنا زیادہ مطلب سنت ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ علم والا ہوگا, تو علم بڑھتا اس کا چلا جائے گا. لیکن میرے بھائی اور دوستوں, انہوں نے بات کی ہے کہ پہلے تو اس کے اپنے آپ کی حفاظت کریں کہ ہمارا کوئی بھی پیٹ میں جانے والا یا ہمارے جسم سے تعلق رکھنے والا کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو ہمارے اندر جا کے کیا ہی پیدا کرے اور ہمارے دل کو مردہ کر دے. اس زمانے میں اچھے لوگ ہوتے تھے, ہمارے حضرت مولانا کا واقعہ ہے جو چھوٹے چھوٹے حضرت مولانا بچپن میں تو ان کی ایک کھلاڑی تھی, تو کھلاتی وہ بچوں لے جاتی, تو وہ لے گئی ایک جگہ, وہاں ہندوؤں کا چالیسواں تھا, کسی کو مر گیا تھا ہمارے گاؤں میں قریب میں, تو اس کا چالیسواں ایک جیجا تھا, تو وہاں کھانا بٹ رہا تھا ہندوؤں میں, کھانے میں بھی بیٹھ کے غریب عورت تھی, مولانا بھائی بچے تو گود میں تھے تو مولانا کھانا تھا, تو ان کھلاڑی نے کہا میاں تم نہ کھاؤ اس کو, کھانے نہیں دیے مولانا کو بچپن میں بھی, کہا اس سے تمہارا دل کیا ہو جائے, مت کھاؤ ہم کھا سکتے ہیں غریب آدمی ہیں, تم تمہارے گھر میں یہی کھایا جاتا ہے. تو اب اندازہ لگائیے بچپن سے جس کی حفاظت کی گئی ہو کہ ان کو وہ کھانا وہ لقمہ ان کے منہ میں نہیں جانے دیا گیا جو بچپن بچہ ہوتا ہے, اس کا ماں کو انو ہے, لیکن اس کو بھی اللہ نے اس کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے, اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں. ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں حفاظت کی جاتی ہے, دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ خود حفاظت کرتا ہے, پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جس میں اللہ حفاظت کرتا ہے. گویا کہ ابتدا اور انتہا یہ مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور بیچ کا حصہ آپ کا ہے امتحان کا کہ تم کرتے ہو اپنی حفاظت نہیں کرتے ہو. اگر اس کو اپنی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کے بعد میں حفاظت فرمائے گا. جس کو ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا بھی ابتدا میں نے پڑھا, میں نے بہت پڑھا, بہت عجیب تھا, مزہ بھی آیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے آخر میں ان کی عمر 81 سال ہوئی, 80 سال کی عمر میں جو آخری ان کے بیٹے ہیں وہ 80 سال کی عمر میں, حضرت مدنی 80 سال کے تھے, آخری میں 80 سال پیدا ہوئے. تو وہاں کے پاس طلبا الٹے سیدھے انہوں نے سوال کیا, حضرت یہ عمر آپ کی اور گھر میں ولادت؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے پہلے جواب یہ دیا, بھائی میں بوڑھا نہیں ہوتا, اور اس کے بعد فرمایا وہ بات سننے کی, پھر فرمایا کہ جوانی میں نے اپنی حفاظت کی, بڑھاپے میں خدا نے میری حفاظت کی. یہ ہے اصل بات, یہ عمر ہوتی ہے, اس میں جو مجاہدہ اسی میں کیا جاتا ہے, یہی عمر کھانے کی ہے, باقی پوری عمر جگالی کی. اس وقت جو کھا لے گا اور اس وقت جو اندر اپنے اندر چیزیں پیدا کر لے گا, پھر ساری عمر اس کی جگالی کرے گا, اور کھاتا رہے گا اور دودھ دیتا رہے گا. یہ ہے اصل بات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عمر امتحان کی رکھی ہے, اگر اس عمر میں اپنا معاملہ صحیح کرتا ہے, اور سب سے زیادہ جو بات ہے اپنے کو حرام لقمے سے بچاتا ہے اور حرام مال سے اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کا ظاہر گزر جاتی ہے اس پر. کیونکہ دیکھیے ایک بات حضرت مجدد صاحب نے لکھی ہے کہ انسان رہے بڑا عزت پسند ہے, اور سب سے زیادہ روحانی ترقی انسان کو دسترخوان پر ہوتی ہے. یہ لکھا ہے مجدد صاحب نے کہ دسترخوان پر انسانوں کی اجلت ظاہر ہو جاتی ہے, کہ کھانا کم ہے کھانے والے زیادہ ہیں, تو آدمی ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے زیادہ مل جائے, اچھا مل جائے, اور اس میں اپنے بغل والے کو بھی نہیں دیکھتا, جلدی سے لے لیتا ہے ٹکٹ, جہاں موقع ملا اپنے منہ میں رکھ گیا. اگر اس وقت وہ دوسروں کا خیال رکھے, یعنی صرف اللہ کے لیے, मेरा भाई है, मेरा मेहमान है, मेरा फला है, और खुद अपने को सहता ले, तो उस पर अल्लाह को बात उसकी पसंद आती है, वो याद कर लीजिए मेहमान आए थे, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था है कोई जिसकी मेहमानी का फर्ज अदा करे, तो साहब ले गए दो रात भर दोनों ने लिया, बीवी ने भूखे रहकर गुजारी और अपने मेहमान से सब खिला दिया, तो अल्लाह को ये अदा पसंद आ, और मामला यही है जब उनको कोई अदा पसंद आ जाती है, अदाही के पसंद से आदमी पसंदीदा हो जाता है, और जब उनका पसंदीदा हो जाता है फिर तो जाहिर है उसको उसका दीन पसंद हो जाता है, और फिर उनकी पसंद अपनी पसंद, उनकी नज़र अपनी नज़र, और मोहब्बत पैदा हो जाती है, और मोहब्बत में अपनी नज़र अपनी पसंद होती नहीं, उनकी नज़र अपनी नज़र, उनकी पसंद अपनी पसंद, अपनी पसंद अपनी नज़र होती नहीं मोहब्बत में, तो अपनी मोहब्बत की नज़र होती नहीं मोहब्बत में, तो मालूम दीन में जो कुछ मिलेगा उसको काम हमको करना है, लेकिन ये बगैर उस दर्द के नहीं होगा कि दूसरों के को देख कर कुड़हन हो, तो ये बात कब पैदा होगी मेरा भाई, जब ये बात पैदा होगी, इसलिए आपने हदीस ने फरमाया कौन इबाद अल्लाह इख्वाना, ए मेरे बंद अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ, ये क्यों फरमाया भाई भाई हो जाओ का भाई नहीं, आप भी जब कोई दो भाई में लड़ाई हो जाती है तो हमारे पास भी कैसा रहते हैं आजकल, लड़ाई में क्या कह रहे हैं, यहाँ दीदी में भाई भाई में चचा भतीजे में मामा भाई में और हर जगह बोली बोली में कितनी लड़ाई हो रही है, तो क्या कहते हैं अल्लाह के बंदे आपका फसल कुछ तो कहे अल्लाह ने अपनी उसके अंदाज से कह रहे दोनों अंडा लगा अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ, इसलिए को हो पहले से हो जाओ, यानी समझो उसको तुम्हारे तुम्हारे अंदर उसके अंदर एक ही खून है तुम्हारा और उनका एक ही बाप है, इसीलिए कैसी लड़ाई, इसीलिए कैसा इंतजार, इसीलिए कैसे दिलों की दूरी, और ये क्यों बात पैदा हो रही है, तो फरमाया कि इस तरह भाई भाई हो जाओ, और भाई भाई होने का मसला क्या वो भी बता दिया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यखुलु वला यस्लिमु वला यज़लिमु वला यअख्तिरु, और उसके बाद आगे बहुत कुछ बता दिया कि ना उसको दलील करता है, ना उसका साथ छोड़ता है, ना उसको दुश्मन के हवाले करता है, ना उसको हकीर समझता है, ना हकीर करता है, वगैरह वगैरह, और हसन भी मना चलाता है हसदू वाला तबगज़ू वाला कि तुम हसन ना करो एक दूसरे से, बुग़्ज़ ना करो एक दूसरे से, नफरत ना करो एक दूसरे से, और सारे अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ, ये सारी बातें आपने इसलिए फरमाई, लेकिन ये सारी बातें उस वक्त पैदा होंगी जब सच्ची मोहब्बत अल्लाह से पैदा हो जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा हो जाए, तो इंसान से भी सच्ची मोहब्बत हो जाती है, इसलिए कि अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का जब बंदा है तो फिर उसको देख कर प्यार आएगा, उसको देख कर मोहब्बत आएगी, कैसा ही हो कैसे ही कमज़ोर है अगर तो तरस आएगा, बीमार है तो तरस आएगा, और है सेहतमंद है तो अल्लाह का हम अल्लाह के हमद करेगा, शुक्र अदा करेगा, एक मेरा भाई कैसा तमाना है, और कभी उससे कोई ऐसा जुमला नहीं कहेगा जिससे मालूम हो कि इसकी तकारब निकलती है, एक बड़े आरिफ थे, वो थे बड़े बदसूरत, देखने में बड़े मामूली सूरत वाले थे लेकिन दिल बड़ा खूबसूरत था, इसी वजह दुनिया में तो बंदे खूबसूरती देखते हैं और अल्लाह मियाँ क्या खूबसूरती देखी जाती है, खूबसूरत कौन है अल्लाह मियाँ वो देखते हैं, सीरत कितनी अच्छी हम लोग देखते हैं सूरत कितनी अच्छी, इसीलिए जब वो सामने खड़े थे तो सब हंसी आ गई, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि माटी पर हसद हो या कुम्हार पर, माटी पर हसद हो या कुम्हार पर हसद हो, अल्लाह का बनाया हुआ है, तो अल्लाह का जब बनाया हुआ है तो न दूसरे को हंसने की जरूरत न खुद उसको अपने को हकीर समझने, इसलिए कुरान जी फरमाया गया ला तमन्नु बिमा फ़ज़ल अल्लाह बिहि बादकुम अला बाद, मत तमन्ना करो काला गोरा बनने की तमन्ना न करे, जो पक्का पद है वो लंबा होने की तमन्ना न करे, जो नाक का चिपका है खड़ी नाक होने की तमन्ना न करे, जो बड़ा बदसूरत है वो खूबसूरत होने की तमन्ना न करे, इसलिए वो बोया कि अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है, यानी अल्लाह आपने अच्छा नहीं बनाया, और अल्लाह ये कहते हैं हमने सबको अच्छा बनाया है, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, अल्लाह से अच्छा बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो उसने जिस पीस को ही बनाया मास्टर पीस बनाया, लेकिन हम अपनी साख को तबाह करें और अपने साथ अपने को गिरा दें, तो हम अपने पैर को कुल्हाड़ी खुद मार लें,
ہمارا ظلم نہ ہو بلا کے انسان کو سو یوں نہیں موت اللہ تو فرماتا ہے ہم سے ظلم نہیں کیا خلق نے پہلے تو کچھ آڑی مار رہے اپنے اوپر ظلم یہ خود کرتے ہیں تو جب یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں گی تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے ترقی کا عالم کیا ہوگا اور ہم کہاں تک پہنچیں گے اور اگر یہ چیزیں کم ہوتی چلی گئیں ہر جگہ بھائی ہم نے کہا علم اور دین نہ ہونے کی وجہ سے دین نہیں ہوگا علم نہیں ہوگا اور العلم کہتے ہیں الکتاب کو والسنۃ علم کس چیز کا نام ہے الکتاب والسنۃ اور الکتاب والسنۃ سے جس کا صحیح تعلق ہوگا علم نام ہے خشیت کا تقوی کا عمل کا خشوع کا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے یہ علم نام ہے اس کا تو اس وجہ جب علم صحیح ہوگا اور دین صحیح ہوگا تو یہ ساری باتیں خود بخود صحیح ہوتی چلی جائیں گی لیکن اگر ہمارا پڑھنا لکھنا سب ایک طرف لیکن ذہن دماغ دوسری طرف تو انجام ہوگا کہ جیسے نماز ہماری ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کہا تو بس سارے وسوسے ساری باتیں ساری سوچیں اسی وقت آ جاتی تو نماز غائب اسی طرح علم ہے دین ہے لیکن جب کام کرنا شروع کرتے ہیں میدان عمل میں آتے ہیں تو ہر چیز نہ علم نہ دین سب غائب اور نہ جانے کہاں کہاں کی سوچ آ جاتی ہے اور کہاں کہاں کی رسمیں آ جاتی ہیں اور کہاں کہاں کی باتیں آ جاتی ہیں اور کیسی کیسی لڑائیوں کی سوچ آ جاتی ہے اور ہمارے آپس کے برادریوں کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں اور پرانے اور نئے تعلقات سامنے آ جاتے ہیں ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے اور ہم کو علم اور دین سے جوڑ دیا گیا ہے کہ علم اور دین سے جوڑنا کیا اصل ہے یعنی ہمارا تعلق علم سے اور دین سے صحیح ہو جائے مگر صحیح کیسے ہوگا سے پڑھی تھی ہمارے خالد صاحب نے اس کی شروع پہ آتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن جو تم کو دیا ہے یعنی العلم جو تم کو دیا ہے یہ غیر معمولی اپنے اندر پاور رکھتا ہے بلکہ یہ پاور ہاؤس ہے اس سے اپنا کنیکشن نہیں کر لو اور اپنے آپ کو اس سے جوڑ لو قرآن کے الفاظ اللہ نے آسان کر دیے ہیں جس طرح یہ کرنٹ اس کے اندر جا رہا ہے ربر اس میں لگا ہوا ہے ہم ربر کو ایسے پکڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے اندر کرنٹ کتنا ہے اور اگر یہ ربر ذرا لیزر سے کاٹیے تو اور رنگا تار ہو جائے اور ہاتھ لگائیے تو آپ کا ہاتھ اس کے اندر چپک کر رہ جائے گا اور آپ اٹھا کر پھینک دیا گیا اتنی دور اور آپ گریں گے وہاں جا کر اسی لیے اس کو لگایا گیا اور جو یہ لوہے کا تھا اس کے اندر تار لگا کر یہاں پر اس کو جوڑ دیا گیا دیکھیے اس کے اندر کتنی طاقت پیدا ہو گئی ایسے ہی قرآن مجید ہے اگر قرآن مجید سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم ننگا نازل کر دیتے پہاڑوں پر تو اور سمندر بھاپ بن کر اڑ جاتے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو کر تہو بالا ہو جاتے اور دنیا بالکل نیست و نابود ہو جاتی لیکن ہم نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے یعنی الفاظ کا ربر کو اس کا جامع پہنا کر تم کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا اور زبان سے اس کو ادا کر رہے ہو لیکن اس کے اندر کرنٹ ہے جیسے یہ ربر ہوتا ہے اس کو آپ جوڑ دیتے ہیں لیکن کرنٹ اس کو دوڑنے لگتا ہے اسی طرح کنیکشن بھی کرنا آ جائے اگر کوئی ناڑی آ کر اس کو جوڑے ابھی جو کچھ نہ جانتا ہو تو اپنے ہی کو خراب کر لے گا اسی لیے قرآن جیت کے بارے میں آتا ہے یہ سو اللہ ہوگی ہی اقوام وی اللہ ہوگی ہی آخرین کچھ کو اٹھا لیتا ہے کچھ کو اٹھا کر پٹا دیتا ہے قرآن جیت جو ہے یہ بعض لوگوں کے لیے ضلال کا ذریعہ بن جاتا ہے بعض لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے بات یہی ہے جو صحیح میں کلک ہوتا ہے وہ صحیح طور پر جوڑ لیتا ہے قرآن مجید کو اس سے اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے آنکھ میں قرآن آ جائے تو آنکھ دیکھنے لگتی ہے اور صحیح طور پر دل کے اندر کی تحقیق پہنچ جاتی ہے اور زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور دماغ صحیح چلنے لگتا ہے اور صحیح پیر صحیح چلنے لگتے ہیں لیکن اگر قرآن مجید سے صحیح کنیکشن نہیں ہے تو بینائی کبھی چلی جاتی ہے دیکھ رہا ہے اور دیکھ نہیں پا رہا ہے سن رہا ہے اور سن نہیں پا رہا ہے بول رہا ہے لیکن کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے بات یہ ہے قرآن سے صحیح کنیکشن نہیں ہے اسی لیے فرمایا گیا علم سے اپنا کنیکشن پیدا کر لو قلم العلم فریضۃ علی کل مسلم جس کو جتنا مل جائے اتنا تو اس کو لینا ہی لینا ہے اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہر شخص کے لیے لازمی ہے اس کا پڑھنا بھی اس کا سمجھنا بھی اور جتنا جس کو مل جائے فقرا ما تیسر منہ
भाई जितना आसानी से पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, कुरान तो पूरा का पूरा अपने अंदर न जाने कितना पावर रखता है। इसीलिए ये अलग बात है कि आप जो कनेक्शन लेते हैं कोई एक क्या कहते हैं उसको एक वोल्टेज जो है बढ़ जाता है घट जाता है, एक फेस दो फेस तीन फेस ये तो आपके ऊपर है, नए फेस में काम चल जाएगा, लेकिन मोटर से पानी खींचना है तो दो फेस और बड़ा कारखाना चलाना है तो हार्ड टाइम जो आती है उससे जोड़ना पड़ता है, बड़े बड़े कारखाने चलने लगते हैं। इसी तरह मामला कुरान मजीद का है, जिसको जितनी जरूरत हो उतना उससे वो ले सकता है। आपका छोटा है कारखाना, छोटी सी मस्जिद, छोटा सा मकान, हल्का सा फेस काफी है, एक फेस आपके लिए काफी है, लेकिन उससे आगे जाएंगे तो दो फेस, उससे आगे जाएंगे तो तीन फेस, और उससे आगे जाएंगे तो कुरान से बराह रास्त रब्ता करना पड़ेगा और बराह रास्त उसकी लाइन लेनी पड़ेगी, और जब उससे लाइन ले लेंगे तो जाहिर है कि उसके अंदर जो एनर्जी पैदा होगी, जो ताकत पैदा होगी, इसी वजह से हमारे हजरत मोहम्मद कुरानी और हसन बनने के बारे में लिखा है और रजुलुल कुरानी, कुरानी आदमी कौन, कितना बड़ा कुरानी आदमी है, बस उसके अंदर उतनी ताकत होगी, उतनी एनर्जी होगी। हजरत मौलाना हमारे शाह हजरत वो इज़्ज़ुद्दीन इब्न अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह के वाक्य में बहुत सुनाया करता हूँ, तारीख दावत मुजीबत में लिखा है, क्या करते देख लीजिए, इज़्ज़ुद्दीन इब्न अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ फतवा दे दिया रहमे समय कि तुम्हारी बादशाहत ना जाए, हमारी वजारत सुना जाए, उस जमाने में जितने वजीर वजीर थे और बादशाह थे सब खिल मिला है कि कौन मौलवी फतवा देने वाला आया है, उन्होंने कहा निपट लिया जाएगा, और उन सब ने आकर उनसे निपटने की बात की, लेकिन किसी की चली नहीं। आखिर बात यहाँ तक पहुँची, ये लंबा गुस्सा है, आखिर में ये होता है कि बादशाह और वजीर सब ये तय करते हैं कि मौलवी जब तक मौजूद रहेगा काम बनेगा नहीं, चलो सब मिलकर उनका सब कलम करते हैं, सब एक साथ जाएंगे तो इस तरह मामला ज्यादा बढ़ने नहीं पाएगा। तो पूरी फौज के साथ उसके घर पर आ गए और खटखटाया, बेटे बाहर निकले, देखा कि फौजी खड़े हुए तलवारें बेनियाम किए हुए हमायल किए हुए और बादशाह अपने वजीर वजीरों के साथ मौजूद है। उन्होंने अपने बाप से जाकर कहा अब्बा मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए कि वजीरों से मसाइल चल रहे थे। उनके अब्बा ने बड़े इत्मीनान से कहा कि तुम्हारे अब्बा के लिए शहादत कहाँ लिखी है, तुम्हारे अब्बा के हक में शहादत कहाँ लिखी है। ये कह के दरवाजा खोला और आकर कहा भाई आप लोग कैसे आए, तारीख में लिखा है सारी तलवारें नीचे गिर गई, सारी तलवारें नीचे गिर गई। और उन्होंने उसके बाद कहा कि हजरत आप क्या चाहते हैं, कहने मैं चाहता हूँ तुमको ही बेचूँ और सारे वजीरों को बेचूँ खास में जाकर। तो उन्होंने कहा ठीक है बेच लीजिए जल्द। तो वजीर को बादशाह को नफास में जाकर बेचा, बेचने के बाद आज़ाद किया, आज़ाद करने के बाद फिर बादशाह बनाया, कहा अब तुम्हारी बादशाह जायज हो गई। ये हैं हमारे अकाबिर, हमारे बड़े जो हैं ये हैं, हमारे हजरत मौलाना भी क्योंकि इन तमाम हजरात को इशारे सवाब करते थे, तो अल्लाह ताला ने मिन जुमला कमालात के बहुत से वो कमालात जिन हजरात में थे महबूबी अता फरमाए कि वंदे मातरम का मसला पेश आया, तो सारे फतवे हर जगह से आते रहे लेकिन हुकूमत में क्यों न रहेंगी। लेकिन मौलाना साहब ने जब हमारे सामने की बात है, कुछ उनके इंटरव्यू लेने वाले आए तो आप वंदे मातरम के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि भाई हम अपने लोगों से कह देंगे बच्चों को हटा लें, किस बात की वो भी ठंडे ठंडे हम अपने बच्चे जाएंगे अपने लोगों से कहेंगे वहाँ सरकारी स्कूलों से जहाँ पढ़ा जा रहा है बच्चों को हटा लें। तहलका मच गया, बीजेपी की हुकूमत थी वहाँ के वजीर माफ़ी मांगने आए, जो तालीम का वजीर था उसको इस्तीफा देना पड़ा, उसको मजबूर किया गया और उधर माफ़ी मांगी हुकूमत ने आके, तो बताइए कितने माफ़ी मंगवाई। जब एक जमाने में बड़े जोर से खिलाफ मुहिम चल रही थी और ये इतलात मिली कि मौलाना को शायद ले जाएं जिंदा में, जिंदा में ले जाएं, तो हजरत मौलाना कहा कि भाई अगर ऐसा वक्त आए तो पूरे रज़ा को लेकर चला जाऊँगा। लेकिन बस ये फिजाओं में मंडलाती रहीं खबरें, जमीन पर ना आ सकी। ये है वो बात, वो ईमान, वो ताकत, वो इल्म की बरकत, वो नाफियत इल्म जब किसी के अंदर वो पैदा हो जाती है तो उसके अंदर अल्लाह ताला वो तासीर रखता है, वो कुव्वत रखता है कि बड़े बड़े दुश्मन उसके सामने आकर के घिर जाते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकें। तो किसी दर्जे में हमारे अंदर ये बात पैदा हो जाए तब काम के नक्शे सामने आएंगे,
جب اللہ سے تعلق ہوگا، قرآن سے رابطہ ہوگا، سنت پر عمل ہوگا، جب یہ باتیں ہمارے اندر کسی درجے میں آئیں گی، اسی درجے میں اللہ کی طرف سے ہماری اوپر نصرتیں آئیں گی، فتح مندیاں آئیں گی، کامرانیاں آئیں گی، اور ہم سامنے چلتے چلے جائیں گے، اور جو ہمارے کرم فرما ہیں ہم کو دیکھ کر وہاں سے واپس جاتے چلے جائیں گے، ہوتے چلے جائیں گے. لیکن یہ بات نہیں ہوگی تو پھر زبانوں پہ شکوا، دلوں میں شکایت، اور یہی سب باتیں رہیں گی، ہوگا کچھ نہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو اجتماع ہمارا ہے، یعنی جس کی بنیاد پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، دل اور دین، اس سے ہمارا رابطہ جتنا قوی ہوگا، جتنا صحیح ہوگا، اتنے ہی ہمارے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے، اور کام کی نوعیتیں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کام نہیں ہے. اس لیے کہ بات کی فراہمی کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کام بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن وہ سطحی ہوتا ہے، جو جانے والا ہوتا ہے، وہ دکھاوے کو ہوتا ہے. سمع سمع اللہ بھی، جو دکھاوا کرتا ہے اللہ دکھا بھی دیتا ہے. استدراج اللہ محفوظ رکھے. استدراج بڑی خطرناک چیز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نامبارک ہوتے ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، لیکن چرچا بہت ہو جاتا ہے، اور ان کا کام بھی پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ ایسا پھیلتا ہوا کام ہوتا ہے جس طرح کسی کو ورم آ جائے بدن پر، اور دوسرے لوگ سمجھے بڑا خوبصورت ہے اور بڑا صحت مند ہے، لیکن ایک دھکا دیا جائے تو چار قلم آدمی کھائے گا. اسی طرح ان کا کام بھی بیٹھ جاتا ہے. نمائشی کام ہوتا ہے، جس طرح 15 دن کی نمائش لگتی ہے تو مان لوتا پورا شہر منڈ کر آ گیا، لیکن 15 دن کے بعد خاک اڑنے لگتی ہے، پتہ نہیں چلتا وہ کام کیا تھا، وہ کب آیا، کہاں گیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کام جو ہو پختہ ہو، گہرا ہو، اور علم کی اہمیت بنیادوں پر ہو. ایک تو میں نے صرف علم کی بات کی، اسی کے ساتھ آج کل یہ بات بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے کہ علم ہے بھی بہت شکتی، علم میں رسوخ ہونا چاہیے. رسوخ جب ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہوائیں کشتی کو ادھر ادھر نہیں ہلاتی. اسی لیے کہا کہ الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. جب رسوخ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر شکوک کی اور شبہات کی آندھیاں اس کو ادھر ادھر نہیں لے جاتی. وہ نہایت اطمینان سے اپنے علم کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ بالکل کھڑا رہتا ہے. آندھی آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور کیسے کیسے حالات آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہتا ہے، اور سگنل دیتا رہتا ہے، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. جو اس کے سگنل کو اپناتے ہیں وہ کئی جگہ چلے جاتے ہیں، اور جو نہیں اپناتے وہ آندھیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، طوفانوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. ان کا نام جبر نہیں رہ جاتا. جو علم میں رسوخ ہونا چاہیے، اور اسی لیے حدیث میں جاتا ہوں من یرید اللہ کی خیر یفقہ فی الدین. جب اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے اندر تفقہ پیدا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ، یعنی مفتی نہیں بنا دیتا، دین کی سمجھ پیدا کر دیتا ہے. یہ یعنی کہاں پر کیسا معاملہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور وہ قرآن کی آیات سے، احادیث نبویہ سے، اور علماء کرام کے اقوال سے، ان کی سیرت سے کشف فیض کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بس میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا تعلق علم سے صحیح کریں اور دین سے صحیح کریں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، جب ہمارا تعلق اس سے استوار ہو جائے گا تو ہمارے حالات انشاءاللہ ہر اعتبار سے بہتر ہو جائیں گے، اور ہر جگہ ہم کام کرنے کے لیے میدان کو ہم بار پائیں گے. ورنہ روڑے ہی روڑے ہیں، موانے ہی موانے ہیں، موانے کو دیکھتا نہیں. اگر کسی سراسر بات گرت گراد مقبول ہلکی تو گرت. مولانا شیر بہت بڑا کرتے تھے، ہوا ہے وہ جو تیز و سند، لیکن گرام اپنا جلا رہا ہے. عمر میں وہ مرد کر کے جس کو حق نے لیے ہیں انداز خسروانہ، تو انداز خسروانہ ملتے ہیں علم اور دین سے صحیح تعلق پیدا کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.